हरे कृष्ण। तो आप सभी को विदित है कि आज विशेष तिथि है, पूर्णमासी। इस पूर्णिमा को प्राय हमारे भारतवर्ष में सभी क्षेत्र में श्री गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा करके जानते हैं। प्राय अधिकांश जगह में भारतवर्ष में सभी संप्रदाय के सभी मत के लोग आपने अपने पूज्य गुरु जी का पूजन आज के दिन करेंगे पूरे सब जगह में। तो होलसेल में जितने गुरु हैं सब संप्रदाय के सबके किया जाएगा, क्योंकि श्री व्यास देवी का जन्म तिथि है। तो व्यासदेव आदि गुरु हैं, सारे शास्त्र पुराण उन्होंने इस जगत को दिए हैं। तो श्री शास्त्र मूर्ति शास्त्र के प्रदान करता श्री व्यासदेव के प्रतिनिधि के रूप में गुरुजन को आज पूजन किया जाता है। लेकिन हमारे संप्रदाय में, गौड़ीय संप्रदाय में व्यास जी की पूजन तो करते हैं, गुरु जी की पूजन तो डेली करते हैं। डेली भगवान के दर्शन के बाद शुरू होता है हमारा दैनिक कार्यक्रम गुरु पूजा से। अरे दैनिक कर्म मंगल आरती से ही गुरु पूजा ही करते हैं हम, क्या ऐसा करें। वो तो 365 दिन में एक दिन थोक में करेंगे, लेकिन हमारा तो 365 दिन ही धायन स्तुवन स्तस्य जस स्त्री संध्याम, दिन में तीन बार करते हैं। तो इसलिए हम उन्हीं प्रकार के थोक में आज के दिन गुरु को पूजा करते नहीं। हम गुरु जी जो कि व्यासदेव के प्रतिनिधि के रूप में माने जाते हैं, हमारे और कृष्ण के बीच में जो घटक है, जो वाहक है, उसी रूप में हम मानते हैं कि हम जानते हैं गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे। कृष्ण अगर भक्त के ऊपर कृपा करना चाहेंगे वो कैसे करते हैं? थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू गुरु, गुरु के द्वारा करते हैं। तो इसलिए भगवान के प्रतिनिधि सीधा भगवान के कृपा प्रसाद के रूप में उनको उनके आविर्भाव दिन के उनको पूजा करते हैं व्यास पूजा उनके। लेकिन प्राय दूसरे संप्रदाय व्यास पूर्णिमा आज मना जाता है कि व्यास आविर्भाव श्री चैतन्य महाप्रभु ने, श्री नित्यानंद प्रभु ने और गौर पार्षद गण ने आज के तिथि में व्यास पूर्णिमा के दिन व्यास पूजा अनुष्ठान किए थे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोले व्यास पूजा होना चाहिए। बोले श्रीपाद व्यास पूजा कहाँ करें? तो वेन्यू डिसाइड किए। श्री नित्यानंद प्रभु बोले वो श्री व्यास के घर में करेंगे। बोले अच्छा, तो व्यवस्था हो गया, सब मेनू फाइनल हुआ, सब सामग्री लेकर आए पूजा करने के लिए। सारे भक्त लोग इकट्ठा हुए, कितने भाई माला दे करके पूजा शुरू करेंगे, माला पहनाएंगे, चंदन देंगे, फिर आरती शंख बजेगा, पूजा करेंगे। और श्रीपाद नित्यानंद प्रभु को सबसे सीनियर थे तो उनको बोला गया, माला हम कहते हैं माला अर्पण करके आप गुरु पूजा कीजिए, वर्षिप कीजिए, गाएंगे कोई दूसरे। तो माला लेकर खड़े हैं, अरे माला पहनाएंगे तो गुरु पूजा शुरू करें, माला पहनाते नहीं। अरे कीर्तन करते करते सवा सात से साढ़े सात पौने आठ आठ बजने लगा, माला पहनाते नहीं। भक्त लोग बोले अरे हम करेंगे क्या, वो माला पकड़ खड़ा है, वो सीनियर है, कुछ करते नहीं, बोलते नहीं, कुछ करते नहीं, सुनते नहीं किसके। जाकर महाप्रभु कंप्लेन के, भले आदमी का पकड़ा दिए तू पागल है, करते नहीं। तो महाप्रभु जाकर के बोले, बोले श्रीपाद सभी अपेक्षा कर रहे हैं, इतनी लेट हो रहे, माला पहना, पूजा शुरू करना है व्यास जी का। उनको देख करके नित्यानंद प्रभु तुरंत माला उनके गला में पहना दी। व्यास देव जी का फोटो रखा गया था माला पहनने के लिए, व्यास देव जी रेडी थे फोटो के रूप में, लेकिन माला किसके गले में डाल दिए? श्रीमन महाप्रभु के गले में। बोले ये क्या कर रहे हैं? और क्या, ये व्यास देव साक्षात व्यास के बाद इधर खड़े, और ये फोटो व्यास क्यों चढ़ा माला पहना? इसलिए ढूंढना तो मेरे पास आऊंगा, आपको माला पहनाऊंगा। तो असली व्यासदेव तो भगवान स्वयं है। तो व्यासदेव जी के जन्म तिथि के दिन कम से कम आज व्यासदेव जी के एक प्रणाम मंत्र उनको प्रणाम करेंगे। भगवद गीता में, भगवद गीता व्यास रचित है, पूरा महाभारत उनके रचित है, महाभारत के अंश में उसमें है, तो उनमें उनको प्रणाम किया जाता है। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदायत पत्र नेत्र येन त्वयं भारत तैलपूर्ण प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र पैतृकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहन नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणुरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। कृष्ण ही जगद्गुरु है, उन्हीं की वंदना है, वही व्यास रूप में व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णु, वही व्यास विभाजन करने के लिए, व्यास मतलब डिवाइडर दिखा तो उसको व्यास रेखा कहते हैं। आप जो गणित पढ़े होंगे परिमिति में होता ना, आर आर मतलब डी, डी माने व्यास होता ना, आर मतलब अर्थ, व्यास अर्थ, तो ही व्यास है। क्यों, एक सर्कल को जो दो भाग कर दे उसको व्यास रेखा कहते हैं, तो ये एक वेद को विभाजन कर डाले इसलिए उनका नाम व्यास है, विशाल बुद्धि वाले हैं। तो नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, तो इसे व्यासदेव जी को वंदना करके प्रणाम करके उनके श्री चरण में प्रणत निवेदन करके उनकी प्रार्थना करते हैं कि वही स्वयं वांग्मय अवतार भगवान के वेद अवतार, उनके कृपा से हमारे जैसे अधम की बुद्धि में हृदय में कुछ वेद ज्ञान प्रकाश होगा, इसलिए सबसे प्रथम उनके श्री चरण में प्रणाम करना है। साक्षात भगवत तुल्य है, भगवत अवतार है। लेकिन उसके बाद में श्री गुरु, क्योंकि व्यास जितने गुरु हैं सब शास्त्र के अनुमोदित में गुरु बन सकते हैं, तो इसलिए शास्त्र मूर्ति के रूप में गुरु को माना जाता है, तो इसलिए गुरु को प्रणाम करना चाहिए। और इसलिए लोग आजकल व्यासदेव नहीं तो गुरु पूजा करते हैं, गुरु पूर्णिमा करते हैं, लेकिन हमारे संप्रदाय में विशेष करके हम लोगों के लिए ठीक है, व्यास पूर्णिमा तो है, व्यासदेव को प्रणाम करते हैं और गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, लेकिन हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि और है, हमारे लिए नहीं संपूर्ण ब्रजवासियों के लिए, संपूर्ण ब्रजवासियों के लिए। आज अगर आप जाएंगे वृंदावन में, गोवर्धन में, कोई ब्रज में, कोई जगह में, लोग भागे भागे गोवर्धन में, गिरिराज परिक्रमा, गिरिराज परिक्रमा सब जाएंगे, लाखों संख्या में गिरिराज लोकल लोग तो भीड़ है। क्यों भाई, किस लिए? उनको बोले व्यास पूर्णा, हम नहीं जानते व्यास पूर्णा क्यों, गुरु पूर्णा वो क्या होता है, सनद वो क्या होता है ना, क्या है आज उत्सव, क्या है आज मुड़िया पूर्णिमा है, क्या है मुड़िया पूर्णिमा, मुड़िया पूर्णो है आज परिक्रमा उठाएंगे, फिर मुड़िया पूर्णिमा क्या होता है, इसलिए मुड़िया कहते हैं। मुड़िया शब्द मुंडन से आया है, मुंडन मतलब हेड सेविंग करना। तो संपूर्ण ब्रज में सिर्फ सनातन गोस्वामी पाद जब ब्रजोत्सव धार कार्य में थे तो ब्रज के जितने गांव है सब जगह लगभग जाते थे। सनातन गोस्वामी का तीक्ष्ण बुद्धि, उनके व्यवहार, उनके आचरण से प्राय ब्रज के सभी लोग इतने आकर्षित थे, उनके प्रति इतने आदर भाव रखते थे, तो ये संपूर्ण ब्रज के गुरु माना जाता था। किसी का घर में कोई झगड़ा हो गया, किसी का गाय किसी का खेत में खा गया, किसी का कोई सामान चोरी कर लिया, किसी का घर में कोई बेटा जन्म हुआ, किसी का कोई घर में कोई किसी का देहांत हो गया, कोई किसी भी प्रकार घरेलू बाहर अंदर भीतर कुछ भी, सारे बाबा के पास, बाबा के पास बताओ। बाबा तो यही से उन्नत बुद्धि वाले थे, क्योंकि राजमंत्री सनातन ये प्रधानमंत्री थे हुसैन शाह सरकार में, अति तीक्ष्ण बुद्धि, अति तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न थे, इसलिए सब समस्या वो तो इंस्टेंटली समाधान करते थे। आजकल छोटी मोटी समस्या के लिए हमको पैसा लेकर के कोर्ट भी भर कर कोर्ट में केस करना पड़ता है। हम केस किए झगड़ा के लिए तो हमारे जीवन बीत जाएगा, हमारे बेटा का जीवन बीत जाएगा, नाती पोते के अमल में अगर विचार आ जाए तो फिर अच्छा बात है इतने पैसा खर्चा करके। लेकिन सनातन गोस्वामी कुछ नहीं, कोर्ट फीस जमा नहीं करना पड़ेगा, कुछ खर्चा नहीं, इंस्टेंटली समाधान, और दोनों पक्षों को वो भाता था पसंद कर। तो इतने आदर पात्र थे पूरे ब्रज में श्री सनातन। तो इसलिए संपूर्ण ब्रज में हर गांव में हर एक लोग, माता पिता स्त्री पुरुष सभी उनको बड़े आदर से अपने गुरु जैसा मानते थे बाबा। और लेकिन सनातन हमारे संप्रदाय है ना, वो मुंडन करके रहते थे, चिता चेतन यही स्वरूप में रहते थे, महाप्रभु के सीधा शिष्य हैं। तो इसलिए और बाकी तो पहले पहले जितने बाबा आते सब जटा जुट आते थे, खूब जटा रख करके इसे आते थे। लेकिन एक बाबा पहले ब्रज में आया जो मुड़िया है, मुसील पर छेड़ वाले, कुछ है नहीं बात। तो इसलिए इस बाबा को बोलते मुड़िया बाबा है। तो ये बाबा पहले जितने बाबा आते थे सब व्यासदेव जी भी जटा जुट वाले हैं ना, ये जटा जुट छोड़ करके बिल्कुल क्लीन सेव हेड वाले हैं। तो इसलिए ब्रज में उनको बोलते थे अपने गांवली भाषा में मुड़िया बाबा, मुंडन करके रहते। तो उनको ही अपने गुरु सबसे आदर पात्र थे। तो सनातन गोस्वामी अपने अंतिम जीवन में श्री गोवर्धन के पाद में मानस गंगा के निकटवर्ती शकलेश्वर महादेव के पास निवास करते थे। तो उनका एक नीति नियम लगाए थे कि प्रतिदिन श्री गोवर्धन परिक्रमा करूंगा, वो करते थे इतने वृद्धावस्था के होने पर भी वो करते थे। लेकिन करते करते आज का तिथि आया तो वृद्धावस्था में वो कर नहीं पाए थे, तो करना छूट गया था। भगवान ने स्टाम्प लगा करके पत्थर दे दिए थे, उसको कर लो, तो उसको करते थे। लेकिन वहीं थे तो वहीं पे गोवर्धन की श्री चरण में और श्री महादेव चकलेश्वर की सान्निध्य में श्री मानसी गंगा के तट में और उनके श्री दिव्य कलेवर वहीं नित्य लीला में प्रवेश किया था। तो इसी बात को बिजली के तरह फैल गया ब्रज में कि मुड़िया बाबा पधार गए, मुड़िया बाबा पधार गए। अरे ब्रज के जन जन दौड़ पड़े हर गांव से, हा 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 बाबा चल बैठे, दौड़ करके आ करके बाबा के दर्शन किए और सब बोले बाबा की तरह हम भी करेंगे, सब आज मुंडन के मानसिंह गांव डुबकी लगाएंगे, सब मुंडन करेंगे। आजकल तो हजारों नाई लग जाएंगे, आज खूब कमाई साल में एक दिन आज सब मुंडन करवाएंगे, मुड़िया पूर्णिमा सब मुंडन करेंगे, बाल कटवाएंगे, मानसिंह नहाएंगे और परिक्रमा करेंगे। एक्चुअली परिक्रमा पहले उसी दिन शुरू हुआ, उससे पहले नहीं करते थे। उस दिन करके श्री सनातन गोस्वामी पाद के श्री शरीर को ले करके ब्रजवासी जय जयकार करते हुए कीर्तन सम्मान प्रोसेशन करते हुए गोवर्धन परिक्रमा किए। उसके बाद रूप जीव आदि सब सनातन गोस्वामी के श्री कलेवर को गोवर्धन से वृंदावन लाए। तो उनके इष्टदेव श्री मदन मोहन के सानिध्य में उनको विधिवत समाधि दिया गया। तो उत्सव हुआ, लेकिन ये उत्सव ब्रज के लिए, अब सनातन भाव तो नहीं जानते, तो मुड़िया बाबा जानते, मुड़िया बाबा आज पूनम को पधारे, उनके लिए हम सब मुंडन करेंगे, मानसिंगा में नहाएंगे और परिक्रमा करेंगे। वो परंपरा 500 साल से अब तक चलते आ रहा है। तो इसीलिए लोग मुड़िया पूर्णिमा है गोवर्धन परिक्रमा करना है, गोवर्धन परिक्रमा इसलिए करते हैं कि इसी सनातन गोस्वामी पाद के संकल्प के कारण उन्हीं की प्रशंसा के लिए करते हैं, ये है ब्रज के लिए। और वो तो ब्रजवासियों के लिए आदर पात्र थे सनातन गोस्वामी, हमारे लिए केवल इतना आदर पात्र नहीं थे, हमारे लिए तो सर्वस्व हैं, हमारे लिए तो सर्वस्व हैं। श्री सनातन गोस्वामी पाद के जीवनी तो बहुत विस्तृत है, वर्णन किए हैं। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं कि श्रीमन महाप्रभु आपने आचार्य धर्म पर सिखाए, विशेष विशेष कार्य को स्वयं आचरण करके सिखाते थे, कभी कभी आपने नित्य निज जन के द्वारा भी कुछ धर्म सिखाते थे। वो बोलते हैं कि श्री रामानंद राय के द्वारा उन्होंने सुंदरता कंदर्प के दर्प को नाश कराए, श्री स्वर्ग दामोदर के द्वारा निरपेक्षता को प्रकाश किए और श्री हरिदास जी के द्वारा सहनशीलता को ज्ञान दिए लोगों को कितने सहिष्णु होना चाहिए और श्री सनातन पाद स्वामी के द्वारा जनाइल दैन्य दैन्य प्रकाश कराए। दैन्यता कैसे होता है प्रैक्टिकली ये श्री सनातन गोस्वामी के द्वारा सिखाए, महाप्रभु उनके द्वारा सिखाए। और ये बात केवल नहीं, सनातन गोस्वामी को भगवान ने आपने कितने अपना मानते थे, सनातन गोस्वामी के दैन्यता जब पहले बार श्री सनातन जी और श्री महाप्रभु के भेंट होता है सबसे प्रथम बार, ऐसे श्री सनातन गोस्वामी के जन्म संपर्क में ऐसा की मदंती है, उनके पूर्वजों कर्नाटकी सारस्वत ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने गंगा निकटवर्ती वास करने के लिए कर्नाटक त्याग करके गंगा जी निकटवर्ती बंगाल में आ गए रहने के लिए, कई पूर्वजों को पीढ़ी तो इसमें रहते रहते तो उनके पिताजी के अनेक पुत्र थे जिनमें से तीन प्रसिद्ध थे, अमर, संतोष और बल्लभ, बाकी और भी पुत्र थे, ये तीनों बड़े होनहार थे। तो जब एक मोर ग्राम करके वहां रहते थे, पढ़ाई लिखाई उनका हुआ था नवदीप में, नवदीप तभी जमाने में विद्या का बड़े प्रसिद्ध नगरी माना जाता था, वहां संस्कृत उर्दू फारसी उसी और उसके न्याय व्याकरण आदि सब कुछ पढ़े थे, ग्रंथ शास्त्र पढ़े थे। उनके गुरुजी कौन थे, सार्वभौम भट्टाचार्य के पिताजी स्वयं विद्यावाचस्पति, वो उनके टीचर थे गुरुजी, उनसे पढ़े थे। और पढ़कर पढ़ते समय नवदीप में पढ़ते समय में महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था, तो इसलिए लोग मुझसे सुने थे पूरा नवदीप हुलस्थुल हो गया था, ये हुआ था। तो स्टूडेंट थे, बाहर से आकर पढ़ रहे थे, बोर्डिंग स्कूल में होंगे, लेकिन सुने थे, जाने और भेंट नहीं हो पाए, देख नहीं पाए, ग्रेजुएशन करके चले गए थे, लेकिन उनके बारे में सुन करके मन इतने भाग गया था कि पढ़ा लिखे करने के बाद भी उनसे मिलने के लिए वो प्रयास करते थे, लेकिन प्रयास क्या करेंगे, महाप्रभु तो युवक अवस्था में 26 साल में गृह त्याग करके संन्यास लेके पूरी चले गए, तभी जमाने में पूरी जाना इतना आसान नहीं, बुक करो प्लेन की ट्रेन चले जाओ ऐसा तो नहीं, जाना पैदल में था, सड़क रोड नहीं था, कितने नद नदी पार करना, पहाड़ जंगल जाना हो नहीं सकता था। तो इसलिए वो पत्र भेजते थे, पत्र भी पोस्टल डिपार्टमेंट नहीं था, फोन ईमेल कुछ नहीं था, बड़े आदमी थे, किसी व्यक्ति को हाथ में पत्र देकर भेजते थे, महाप्रभु के साथ कुछ संपर्क साधना चाहते थे। बाद में किसी कारण से उनको बंग के नवाब हुसैन शाह उनको जबरदस्ती आपने मंत्री पद में अपॉइंट किया। आजकल को चपरासी पद में अपॉइंट होने के लिए हमको कितने लांच देना पड़ता है, कितने कंपटीशन करना पड़ता है, भाग्य में आ रहे वो पोस्ट अपॉइंटमेंट मिल गया, लेकिन यो कोई सेक्रेटरी नहीं, किरानी नहीं, कुछ नहीं, साक्षात मिनिस्टर, वो भी ऑर्डिनरी मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर एंड रेवेन्यू मिनिस्टर, ये दो पदवी जो मंत्री थे उनको हटा करके गवर्नमेंट खोद हुसैन शाह सरकार स्वयं उनको पकड़ के बोला आप उसको लीजिए, बहुत उनको धन दौलत सुविधा दिया, वो फिर भी नहीं राजी होते थे, ब्राह्मण का स्वभाव नहीं नौकरी करना, वो राजी नहीं होते थे, लेकिन ये धमकी दिया, बोला आप अगर मेरे मंत्री पद स्वीकार नहीं करेंगे मैं यहाँ पे जितने ब्राह्मण सब मार दूंगा, सब मंदिर तोड़वा दूंगा, ये धमकी के भय से बोले नृसिंह से है राक्षस, तो राजी हो जाना ठीक है, बचाएंगे कम से कम हमारे चलते ब्राह्मण देवता रक्षा पाएंगे, को रक्षा होगा, सब कुछ होगा, तो इसलिए उन्होंने मंत्री पद स्वीकार कर लिए। इस चैलेंज में दोनों भाई, तीनों भाई लिए थे एक्चुअली, दोनों, एक तो सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री हुए, उनका नाम पड़ा साकर मलिक उर्दू टाइटल, रूप गोस्वामी दबरी खास हुए रेवेन्यू मिनिस्टर, और चीफ सेक्रेटरी के रूप में उनके छोटे भाई बल्लभ रहे जिनका नाम अनुपम था। तो इस प्रकार तीनों भाई राज कर्मचारी, सबसे अच्छे कर्मचारी मंत्री के रूप में अपॉइंट हुए, तो बहुत राज के सुंदर राजा ही माना गया उनको, राजा तो उनको अपने बड़े भाई जैसे मानते थे, अपने बड़े भाई जैसे सम्मान करते थे महाराज, उनको मानते सारे लोग के आदृत थे उन्होंने। तो उसी समय में भी उन्होंने बारंबार पत्र लिख करके लोग भेजते थे पूरी महाप्रभु से संपर्क साधने के लिए, लेकिन सकड़ो पत्र लिखने 100 लेटर भेजने के बाद 100 बार किसी आदमी को भेजते थे, आदमी जाने में 15 दिन लगता था, आने में 15 दिन लगता था, घोड़ा में जाता था भेजना आता था, वो आंसर नहीं आता था, महाप्रभु को उत्तर नहीं देते थे। 100 लेटर के बाद 1 लेटर का आंसर आया, 2 लाइन एक लिख करके भेज दिए थे महाप्रभु, 1 श्लोक लिखे थे और इस श्लोक के उत्तर को पढ़ करके रूप सनातन ने समझ गए, तीक्ष्ण बुद्धि था भगवान की क्या इच्छा है, उत्तर क्या था, उत्तर यही था महाप्रभु ने लिखे थे। जैसे एक पर पुरुष व्यसनी नारी, कोई स्त्री विवाह हो चुका है लेकिन अपने पति को छोड़ करके कि दूसरे पुरुष के प्रति उनके साथ उनका संबंध है, तो वो ऐसे नारी घर में गृह कर्म से इतनी निपुण होकर करेगी कि ना पति को ना सास को ना ननंद को ना किसी को पता चले कि उसका मन में कुछ दूसरा विचार, इतने एक्सपर्टली वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज हैंडल करेगी। लेकिन 24 घंटे मन में क्या चलते रहते होंगे, अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं जाऊं, वही ताक में रहेगी और काम ऐसे करे किसी को पता ना चले, बस इतने ही 2 लाइन लेकर वहां पर भेजती, उसके हम क्या समझेंगे। 100 हम मिलना चाहते हैं, 100 लेटर के बाद जवाब यही आया, हम लोग तो कुछ समझ नहीं पाते लेकिन रूप सनातन समझ गए, हाँ प्रभु ने सही उत्तर दिए कि हमको हमारे पति, ये तो हमारे डुप्लीकेट पति है, वो संसार असली पति तो महाप्रभु है, अब उनके प्रति हम मन में सोचते हैं उनको पाने के लिए, उनके पास जाने के लिए, लेकिन अभी शादी किए हैं उनसे, किसे, हुसैन शाह से, तो उनके साथ ये सरकार में ऐसे काम काज करेंगे किसी को पता ना चले कि हमारा मन में कोई और विचार है, लेकिन जैसे चांस मिले भागी जाएंगे, यही विचार रखे थे, ये भाव को देने के लिए ये उत्तर लिखे थे। तो उसके बाद उत्कंठा जब बढ़ गया तो महाप्रभु वृंदावन आने का छल करके, वृंदावन नहीं आए, वो उन्हीं को दर्शन देने के लिए गए थे, रामकेली ग्राम गए, अरे लाखों करोड़ों लोग उनके साथ चलते थे, हुसैन साहब तो त्रस्त हो गया, बाप रे बाप ये कौन है, ये हिंदू काफिर, करोड़ों लोग उनके पीछे चल रहे हैं, बड़ी लंबी कथा है, जो भी आश्चर्य होकर के उनको परामर्श किया था, वो आयन पास कर दिया कि कोई उनको डिस्टर्ब ना करे, ये तो साक्षात खुदा है, खुदा करके मान लिया, नृसिंह जवन राजा भी, लेकिन उनको धमकी देकर मना तो दिए लेकिन सनातन रूप को माना नहीं, वो समझ गए कि प्रभु आए हैं जिनके लिए हम कितने तरस रहे थे। तो ऐसे कहा जाता है कि तीनों भाई और उनके भतीजा अभी छोटे थे, बिल्कुल शिशु अवस्था थे, उनको भी साथ में ले गए थे, अर्धरात्र में सिविल ड्रेस पहन करके गुप्त रूप में मसाल लेकर के गए उनसे मिलने के लिए राम के लिए, महाप्रभु जानते थे वो सर्वज्ञ हैं, उनको इसे पता नहीं को आएंगे मुझे मिलने के लिए, खबर अंतर नहीं था, फोन फान नहीं किया, अपॉइंटमेंट नहीं था, लेकिन पता था कि आ जाएंगे। अर्धरात्र के बाद ये दोनों भाई भूत की तरह मसाल लेकर छिप छिप करके पूरे उनके परिवार जा रहा है मिलने के लिए, सारे सोए हुए थके, दिन भर कीर्तन करते नाच गए सोए हुए, महाप्रभु अकेले बैठे हुए हैं कुटिया में, दिहुड़ी जल रहा है, अकेले बैठे हैं, महाप्रभु क्यों नहीं सो रहे हैं, उनके निजजन श्रीपाद नित्यानंद प्रभु उस हरिदास ठाकुर पूछे, प्रभु आज विश्राम नहीं कर रहे ना, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, किसी को अपेक्षा कर रहा हूँ, आप दोनों को भी अपेक्षा करना पड़ेगा प्रभु, किस लिए ना, 2 व्यक्ति आएंगे कुछ उनके साथ कोई और आ सकते हैं, आप उनको मेरे पास लेकर आना, मैं बैठा कौन है, कौन इतने भगवान, हमको नहीं पता, नहीं आपको पता, आप देखेंगे वे आने वाला है। अरे अर्ध रात्र के बाद निशांत में छिप छिप करके वो दोनों आए, सब सोए हुए निस्तब्ध रात में, नित्यानंद हरिदास सबसे पहले उन्हीं का भेंट हुआ, भगवान से मिलने के लिए सबसे पहले गुरु का होना आवश्यकता है, भगवान यही दिखाए, इसीलिए जगा करके नित्यानंद को रखे, गुरु और नाम के बिना भगवत दर्शन संभव नहीं है, ये नामाचार्य और श्री आदि गुरु नित्यानंद दोनों को इसलिए जगा करके रखे भगवान, इसलिए भगवत कृपा से गुरु मिले, भगवत कृपा से नाम मिले, गुरु कृपा से कृष्ण मिले, ये भगवान ने दिखाते हैं। इसलिए नित्यानंद हरिदास को जगा करके रात में रखे और उन्हीं के सबसे पहले भेंट होता है, उन वो लेकर के आए भगवान बैठे थे उनसे मिलाए। जब उनके भेंट होता है अर्ध रात्रि दोई भाई आयला प्रभु स्थाने प्रथम मिलीला नित्यानंद हरिदास सने। अर्धरात्रि में आकर के सबसे पहले नित्यानंद हरिदास से मिले। तारा दोई जन जाना आयला प्रभु रघुचरे रूप साकर मल्लिक आयला तुमा देखी बारे। ओ दोनों जाकर बता रूप और साकर मल्लिक, उर्दू भाषा है ये, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर एंड रेवेन्यू मिनिस्टर दोनों आए मिलने के लिए, ये बात बता है प्रभावित करने के लिए। इसी इलाका के सबसे बड़े प्रधानमंत्री राजस्व मंत्री हो दोनों आए चीफ को भेंट करने के लिए। देखी बारे और कैसे गए थे, दुई गुच्छा तृण दुहे दसन धरिया, दांत में दो घास के उखाड़ करके तो कुछ घास मुंह में लिए थे इसे दबा कर। दुई गुच्छा तृण दुहे दसन धरिया गले वस्त्र बांधी पड़े दंडवत हया। गले में वस्त्र डाल करके मुंह में घास के तिनका दबा करके दांत में दंडवत प्रणाम किए। मैं शायद आपको कई बार बता चुका हूं ऐसे क्यों किया जाता है, मुंह में घास के तिनका क्यों लेते हैं, गले में वस्त्र क्यों डालते हैं, कई बार बता चुका हूं, रिपीट नहीं करना चाहता हूं। तो इस प्रकार कह करके उन्होंने कि धन्य रोदन करे आनंद विफल प्रभु कहे उठ उठ हैल मंगल। रोते रोते प्रणाम किए, प्रभु बोले उठो 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 वास हो गया उठो। उठी दुई भाई तवे दंते तृण धरी दैन्य करी स्तुति करे कर जोड़ा करी। अब उठ करके हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय पतित पावन जय जय महाशय नीच जाति नीच संगी करी नीच काज तुम्हारा अग्रत प्रभु कहिते वासिलाज। बोलते हैं कि प्रभु शर्म लगता है हमारा, हम कौन है इंट्रोडक्शन देने के लिए हम शर्मिंदा हो रहे हैं, क्यों शर्म लग रहा है ना। नीच जाति नीच संगी करी नीच कार्य, सब प्रकार से नीच हैं और आप तो साक्षात परम भगवान है, पवित्रम परमम भवान, और आपके सामने आने के लिए बहुत शर्म लग रहा है हमको। तो लेकिन आप पतित पावन हो इसलिए आपके सामने बोलते हैं। तो इस प्रकार बोलते हैं कि आपने अजोग्य देखी मने पाऊं क्षवा तथापि तुम्हारा गुणे उपजय लोभा। बोलते हैं कि जब हम अपना बारे में सोचते हैं विचार करते हैं आपने कितने अजोग्य है सुन करके मन में बड़ा खेद होता है, लेकिन प्रभु आपके गुण के बारे में जो विचार करते हैं बड़े लोभ आता है, तो इसलिए आपको मिलना चाहते हैं। तो इस प्रकार इतने दैन्य करके जब प्रार्थना करते हैं महाप्रभु उनको उठाकर बोलते हैं सनातन रूप बंद करो, उनके मुंह में हाथ देकर महाप्रभु उठ करके उनके मुंह में हाथ दिए। बोले इतने दैन्य वचन मैं सहन नहीं कर सकता हूं, मेरे छाती फट जाएगा, आप इतने दैन्यता देख करके बंद करो, मैं सहन नहीं कर सकता हूं। आप लोग मेरे नित्य पुरातन दास हैं, आज से आपके नाम में रखता हूं रूप और सनातन। वहीं पे इनिशिएशन हो गया मिडनाइट में, वही नामकरण कर दिए और करके। तो उसके बाद में मिलन हुआ, बड़ी लंबी कथा है कैसे हुआ। तो बाद में रूप और अनुपम वो दोनों छोड़कर आ जाते हैं, उनका इस्तीफा तो स्वीकार हो जाता है राजा के द्वारा। सनातन के प्रधानमंत्री थे, राजा तो सब कुछ मानता था उनको, उनके उन्होंने जो एप्लीकेशन दी, कौन सा एप्लीकेशन बोलते हैं उसको, रेजिग्नेशन एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया गया, रिजाइन स्वीकार राजा नहीं किया। तो आकर घर में बैठे छुट्टी लेकर के, राजा ने बोला क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या छुट्टी, सीख ली, सीख ली डाले हैं, बीमार हैं, ठीक है दो दिन चार दिन, राजा उनके बिना असह्य हो पड़ता है, उनके बिना काज कैसे चले, दोनों भाई तो रिजिग्नेशन देके चले गए, ये नहीं आ रहा है। कैसे चलेगा? तो आपने राजवती अपने पर्सनल डॉक्टर को भेजा, असिस्टेंट नर्स को भेजा, पार्टी पूरा भेजा, बोले जाओ क्या उनके सीख है उसको ट्रीटमेंट करके लेकर आओ, उनके बिना तो हमारा काम ना चले। तो पूरे पार्टी गया, एम्बुलेंस गाड़ी हम मतलब घोड़े हाथी में गए होंगे, तो गा करके जाके पहुंचे, सी की सर्टिफिकेट क्या दिखाएंगे, जाकर पहुंचे सनातन गोस्वामी पाद का उनके भवन में। सनातन गोस्वामी आसन में बैठे हुए थे चंदन आदि लगा करके, और 10-5 पंडित को हायर कर रखे थे, ब्राह्मण पंडित, भागवत क्लास चल रहा था, भागवत चर्चा चल रहा था, बैठे थे। तो देखी बोले अरे दिखा तो कुछ नहीं पड़ रहा है, तो भागवत क्लास चल रहा है। सनातन गोस्वामी देख लिए कि राजवद्य आए हैं, राजवद्य के साथ उनके सारे पार्षदगण भी आए हैं, सीधा राजा ने भेजे हैं डायरेक्ट। वो जानते थे राजा मुझे चाहता होगा, भेजा है, समझ गए। वो राजवद्य आकर के प्रधानमंत्री ने प्रणाम किया, जनाब प्रणाम है, क्या ना हुकुम करे, हजूर ने भेजे हैं, महाराज साहब ने भेजे हैं आपके बड़ी फूल बड़ी चेकअप करने के लिए, क्या आपका तबीयत खराब है, मुझे रिपोर्ट देना है। दिखते तो कुछ नहीं है, लेकिन जनाब आप आदेश कीजिए मैं आपके बड़ी चेकअप करूं। तभी जमाने में आजकल से बड़ी चेकअप सुला करके सारे सुई फुई डाल करके आगे पीछे इसे नहीं करते थे। बड़ी चेकअप मीन्स एक्सटर्नली पल्स देखेंगे, नब्ज देखते थे, आंख देखते थे, मुंह देखते थे, शरीर के वर्ण, इसी से ही पूरे फुल बॉडी का रिपोर्ट होता था, ऐसे करते थे। तो चेकिंग किया, चेकिंग करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, क्या हुआ ना प्रधानमंत्री महोदय क्षमा करें, क्या ना मैं रिपोर्ट लिखूं, मैं सत्य रिपोर्ट लिखना पड़ेगा, राजा बड़ा नुकसान से ना, लिखो सही रिपोर्ट, लिखूं सही रिपोर्ट लिखूं, आप अगर आदेश दें ना लिखूं। जानते थे क्या रिपोर्ट लिखेगा, ना रिपोर्ट लिखूंगी, बिल्कुल निरोग शरीर है आपके, कोई रोग भग चिन्ह पहचान नहीं, लिख दूं, जांच में ही रिपोर्ट निकला, लिख दो, जो देखा तुम्हें कोई झूठा होगा मेरे लिए, लिख दो। उनसे अनुमोदन करके परमिशन लेकर के रिपोर्ट पास करके दे दिया, और सनातन गोस्वामी साइन किए कि यस पर्सनली मेरा बॉडी चेकअप किया करके, वो बिल्कुल कंप्लीट क्योर बॉडी, निरोग शरीर, जैसे रिपोर्ट मिला हुसैन शाह को, वो तो आग बुकला हो गया, अरे व्हाट इज दिस, ये मुझे झूठ बोलकर क्यों खबर भेजा, दूध भेजा क्यों, साकर मल्लिक जल्दी आइए, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। दूत आकर बोला मेरी बात सुने नहीं, वो कुछ बोल नहीं सकता प्रधानमंत्री महोदय। तो हुसैन शाह स्वयं गया, महाराज हुसैन शाह स्वयं गया अपने बड़ी गार्ड अपने परिकर को लेकर के, जाकर देखा तब भी बैठ कर भाव क्लास चल था, उनको डर नहीं था, इतने निडर हो करके उन्होंने क्लास चलो, जदि जानता था कि इतने निष्ठुर राजा है कुछ भी एक्शन ले सकता, लेकिन जब भागवत के शरण में निर्भय बैठ करके भागवत चर्चा कर रहे थे। राजा पहुंचा, देखा उसको, देखे राजा है, उठ कर खड़े हुए, जथाधि भी सम्मान किए। राजा आकर पहुंचा, पहुंच करके रिक्वेस्ट किया, बोले साकर मलिक ऐसा क्यों कर रहा, मैं तो तुमको मेरे बड़ा भाई जैसे मानता हूं, इतने मान देता हूं, तुझे क्या चाहिए, और कुछ भत्ता बढ़ाऊं, और कुछ चाहिए, अरे तू ही राजा बन जा, मैं तो जा रहा हूं लड़ाई में, तू प्लीज मेरे से अलग मत हो, पूरे राज्य तेरे ऊपर टिका है, मैं तेरे अनुसार कार्य करता हूं, तू ऐसा मत करो, इतने निहुरा होल कर हाथ जोड़ के बोला, उनको रिक्वेस्ट किया, आपने बड़ा भाई करके माना उसको। सनातन से बोले वहां कि आप जो कहें ठीक है, आप बड़े हैं मुझे इतने सम्मान देते हैं, लेकिन क्षमा करे सरकार मैं नहीं जा सकता हूं। क्यों नहीं, कोई कारण तो हो ना, मेरा इच्छा नहीं है, सीख लीव देना आप मानते नहीं, इसलिए सीख लीव की छुट्टी लिया था, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है, मन सीख है, शरीर सीख नहीं है, शरीर ठीक है मन मेरा ठीक नहीं है, मानसिक व्याधि, मानसिक व्याधि भाग क्लास करेगा, लेकिन कहे कि मेरा मन ठीक नहीं मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने खूब समझाया, खूब दावाज दिखाया, खूब और पैसा सुविधा के दिखाया, लेकिन वो कहां माने, जिनके कृष्ण चरण में चैतन्य चरण में जिसका मति लग गया, ये दुनिया की आश्चर्य में फंसेगा, नहीं माने तो धमक दिया राजा ने, बोला जानता मैं क्या कर सकता हूं, मेरे बात अमान्य करता है। सनातन गोस्वामी बोले महाराज पता है, क्या पता है ना, ज्यादा से ज्यादा हमारा मॉडल कर सकते, मैं तो तैयार हूं पहले से, और क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शरीर को मीठा मिटा देंगे, मार देंगे, मार दो, तैयार। परीक्षित महाराज, 7 दिन का मरने का नोटिस मिला था, 7 दिन में ही भागवत सुन करके वो निडर हो गए। बोले अरे तख्य का संस्कार करके जाएगा, हु केयर्स। भागवत ऐसे ग्रंथ है, कोई उनको मनोयोग सहकार श्रवण करे बिल्कुल मृत्यु भय से बच जाएगा। और वो सनातन गोस्वामी बाद भागवत शरण में थे इतने दिन से, तो उनको मरने का डर होगा। मर में ये शरीर में थोड़ी शरीर के संस्कार जो करना है, मर तो जो इससे कोई तो करेगा, तुम्हारे पास वो शक्ति है क्या? बहुत ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा मर्डर कर दे, कर दो, आई एम रेडी फॉर दैट। राजा हद हो गए, मरने के लिए डरता नहीं। सारे दुनिया जिसी बात के लिए कतरा उठते हैं, वो तो आसान से करते हैं, मातो और क्या करेगा शरीर में, शरीर क्योंकि विदेह थे, शरीर स्तर से ऊपर उठ चुके थे। तो राजा देखा तो ये मरने के लिए से डरता नहीं, लेकिन मार दूंगा तो मेरा कैसा काम चलेगा, आज नहीं कुछ दिमाग खराब है, बोलता है मेंटल केस हो गया कुछ, बड़े सिधर जाएगा, तो इसलिए ऐसा करो, बहुत कह नहीं मन, बोले जेल में डालो। उनको जेल में डाल दिया, हाँ, और विशेष ऑर्डर दिया, अरे महामंत्री थे, काल अगर जेल से निकल गए तो फिर महामंत्री बन जाएंगे, और जेल जो असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट उनका धड़धड़ धड़ हो रहा है, पता नहीं महामंत्री है पता नहीं, उनसे साइन करके हमने काम निकालते थे, तनख्वाह लेते थे, अब भी उनको जेल में रखे हैं, आज अगर जेल से निकल गई, वही तो राजा है, राजा तो उनकी बात मान रहा है, हमारा क्या हाल कर देगा। तो इसलिए जो जेलर जो हैं, जेलर और जेलर वो कैसे डील करते होंगे उनसे, लेकिन फिर भी राजा धमकी देकर बोला ए स्ट्रिक्टली उनको जेल में रखो, तो जेल में डाल दिया गया और वो चला गया। तो जेल में रखे थे तो इसी सनातन गोस्वामी पाद जेल में रहते हुए, रूप गोस्वामी तो चले गए थे, जब रूप गोस्वामी को पता चला, रूप गोस्वामी जब रेजिग्नेशन के घर में गए थे, उनके धन लेकर के वर्णन आता है, एक बड़े पोत, पोत जानते ना, नौका तो छोटा सा, जिसमें पोत होता है जिसमें 2-4-5 ट्रक लोड होकर पार हो जाए, ऐसे बड़े बड़े नौका, इतने बड़े विशाल नौका में सोने के मोहर भरे थे, भरा हुआ सोना मोहर लेकर गए थे, कई टनों सोने मोहर, ये उनका कमाई था, वो लेकर गए थे घर। जब उनका भत्ता मिला, जब पेंशन तो नहीं, वो रेजिग्नेशन देकर जब गए थे, लेकर गए थे, वो सनातन गोस्वामी तो थे, इन जॉब थे, अन जॉब में लीन में रहते थे, तो उनको जेल में डाल दिया। तो रूप गोस्वामी ने अपना सब काम करके पता लगाए, महाप्रभु वृंदावन गए, तो एक चिट्ठी भेज दिए भैया के पास, तो उनका कई सूत्रधर है, बोले भैया मैं 10,000 रुपया तो बैंक तो था नहीं, इस व्यापारी के पास 10,000 रुपया रखा हूं, वो आपको जैसे खबर करो इशारा छिप करके कहीं रात को दे देगा आपको, आप उसको इस्तेमाल करना और निकल कर आ जाना, हम तो चले वृंदावन, आप आ जाना। चिट्ठी भेज करके दोनों भाई चल पड़े, जैसे पत्री मिला जेल में सनातन पाद को, तो उन्होंने तुरंत एक्टिव हो गए, और वो जेलर जो था वो डेली आता था, आके बैठता था उनके पास में, प्रधानमंत्री है ना, तो आकर मिलता था। तो उनको एक बार सनातन गोस्वामी बोले देखो, वो मुसलमान था, बोले देखो भैया, धर्म कर्म का समय धर्म कर्म करना चाहिए, और आप तो साक्षात जिंदा पीर है, मुसलमान पीर बोलते हैं कि बहुत बड़े होगा, बोलते आप तो जीते जी जिंदा पीर है, और मुझे मक्का जाना है, मुझे कहाँ जाना है, मक्का जाना है, मक्का जाने से सब बहुत सहायता करता है, मक्का जाएगा, मक्का जाना है तो मुझे छोड़ दो। तो आपने सम्मान किसी की प्रशंसा, ऊपर के साधारण व्यक्ति नहीं, साक्षात प्रधानमंत्री उनको प्रशंसा करे, वो एक बेचारा जेलर है, वो तो उसका जमीन पैर से नीचे खिसक गया, मैं इतने बड़ा मैं हूँ, जिंदा पीर हो गया, मैं इतने धर्मचारी हूँ, और मक्का हेल्प करना चाहिए, लेकिन राजा भाई से फिर भी नहीं मानता था, उनको बड़े सिखाए उनको। तो बाद में उसको बोले देखो, अगर आपको छोड़ दूं राजा ऐसा करे, बहुत बताया कि राजा आने से इसे बता देना, ये ग्राउंड बता देना, इसे करना ऐसे करना, तो फिर भी सोचता था कोई बात नहीं छोड़ तो सकता हूं, लेकिन सरकार अब हुसैन शाह को पता चल जाएगा, मुझे नहीं सपरिवार मार देगा मुझे, एड़े प्रशंस है वो। तो सनातन गोस्वामी तो बड़े विचक्षण थे, बोले देखे तो वो अभी अधेड़ मन में फंसा है, करूंगा नहीं करूंगा डर रहा। तो 5,000 सोने का स्वर्ण मोहर देने के लिए उनके पास डील किए, बोले 5,000 स्वर्ण मुद्रा देता हूं छोड़ दो। तो मन में सोच गया कमाए, अगर नौकरी छूट भी जाए तो चल जाएगा मेरा काम, तो जिंदगी भर तक 5,000 समझ एक साथ मिल जाएगा। तो फिर भी मन में आता था 60-40, डरता था राजा आएगा मार देगा, सोना देकर पकड़ा जाएगा, अगर पता चल गया तो डरता था फिर भी। तो सनातन को समझ का मन को जान लिए तो 7,500 और 2,500 पढ़ा, 7,500 स्वर्ण मुद्रा टेबल के ऊपर छन करके रख दिया उनके सामने। अरे बाप रे, उसको देख लिया, बोला कब निकलना, बोली कब जाना, एक बार फिर गया मन। विचक्षण बुद्धि जानते किस काम निकलना है, फटाक से जेलर को पटा करके लांच दे करके उनको ग्राउंड ही बताते मुझे लेकर चलो, बोले बाथरूम गया था और गंगा में खुद क्या मर गए, खा गए उसको जल चक्र में, क्या कर सारे पक्का उनको करके सब बुद्धि देकर गए थे। जाके मैं गंगा में कूद गए, कूद करके तैर करके गंगा पार करके, ना कोई कपड़ा ना गामछा लता कुछ भी नहीं था बैग बैगेज, गंगा पार करके गीले कपड़े में भाग कर चले वृंदावन की ओर चले जा रहे थे। ये था उनके त्याग। एक कर्मचारी जो उनका पर्सनल सर्वेंट था ईशान, उनको पता चला, दौड़ दौड़े आया उनके पीछे, वो भी गंगा पार को बोला महामंत्री सब चले जा रहे हैं, इतने बड़े हैं उनके सेवा कोई नहीं उनके साथ, वो भी पार कर उनके साथ आया। तो आया था तो उन्होंने रास्ता में बंगाल से रामकली आते समय रास्ता में पर्वतमाला पड़ता है बिहार बॉर्डर में पास करते गंगा पार, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पातड़ा पर्वत पड़ा, अभी पर्वत है और निर्जन स्थान जंगल, बड़े डाकू लोग रहते हैं, लूटपाट होता है। तो वहां एक डाकू रहता था, वो एक ज्योतिष रखा था उनके पास में, गणना करता था कौन आता है, पहले पता लगा जाता है उनके पास कितना धन है, तो उसको मारूंगा या पिटूंगा किस पे का लूटूंगा इसे विचार करता था। लेकिन वो बताया अभी दो आएंगे, दिखने में तो लगता है कि कुछ नहीं गरीब है, लेकिन 8 ठन ठन ओरिजिनल असरीपी है, स्वर्ण मुद्रा है उनके पास, अष्ट स्वर्ण मुद्रा। उस डाकू तो सुन 8 स्वर्ण मुद्रा है, खंटी स्वर्ण मुद्रा, बोला उनको तो मर्डर कर डालूंगा, उनको तो आज रात को मर्डर करके ये स्वर्ण मुद्रा ले लूंगा। बिल्कुल प्लान बना लिया, और कैसे मर्डर करूंगा, देखते थे तो आ रहे हैं, बोले अभी रात हो रहा है शाम हो रहा है, तुमको बुला करके और बोला कि देखो आप पता नहीं ये बहुत खतरनाक एरिया है, ऐसे है थके हुए हैं, अब चलिए चलिए हाँ मैं आपको हेल्प करूंगा चलिए। और रहने के लिए उनको गेस्ट हाउस दिया, अटैच बाथरूम दिया बढ़िया, और बोला आप तो थके मन थे खाए पिए नहीं, खाने के लिए व्यवस्था दे दे सुचान फल, बोला कुकिंग करके खाइए। तो सनातन को मन में आश्चर्य हो रहा था, जान नहीं पहचान नहीं, इतने हमको बढ़िया स्वागत कर रहा है, इतने हमको सेवा इतने में कर रहा है। तो जाकर के स्नान किए, आकर कुकिंग किए, भूखे थे दो दिन से नहीं खाते, कुकिंग करके प्रसाद पाए, लेकिन मन में उनका बड़े विचार चल रहा था, ये इतने हमको इस प्रकार की सेवा क्यों कर रहा है। खा पी कर थके हुए थे ईशान सोने से पहले सनातन बोले ईशान, बोले प्रभु जी आपके पास कुछ धन है क्या। ना मंत्री महाशय कुछ नहीं, 7 सोने का मोहर केवल ले आया था इमरजेंसी के लिए। बोले ये जमक काला जमक के साथ में क्यों लेकर आया, धन लेकर आया साथ, निकालो। तो दे दिया डर के मारे, 7 लेकर एक छिपा कर रख दिया था, फिर भी दे दिया। तो उसको लेकर के रात हो चुका था, और वो रात में वो जो डाकू वो जानता था खा पी कर सो गए होंगे, अर्धरात्र में आपने पूजा करके काली पूजा करके तरवाल को घिस पजा करके बिल्कुल धार देकर सांड देकर तैयार रखता, बोले जाकर तुरंत गला काट दूंगा दोनों का और छीन कर लूट कर ले जाऊंगा, बिल्कुल तैयार होता था, अभी एक्शन लेने वाला ही था, आप रेडी करके था तलवार उठा के पूजा पूजी करके देवी को तलवार उठाने वाला, तब बाहर से नॉक हुआ, वो डर गया आधी रात में कौन दरवाजा टकटका रहा है, और दरवाजा धीरे से खोल कर दिखा रहे, जिसको मारने जा रहा था वही खड़े, जिसको मैं जिसके गला काटने जा रहा था दरवाजा सामने वही खड़े। बोली माय गॉड ये क्या हो गया, जो खुला देखा हाँ भाई मर्डर करने जा रहा था, पता चल गया क्या क्या हो गया, बोला कैसे आए। वो कुछ बोलने से पहले सनातन गोस्वामी पास हाथ जोड़ करके 7 स्वर्ण मुद्रा हमको देने लगे, भैया आप इसको लीजिए। वो देखा 7 किसी क्यों दे रहे, भैया लीजिए क्या बात है, आप इतने हमने आपको सेवा किए, हमको थोड़ा पार करा दीजिए घाटी, आप रखिए उसे। वो तो हैरान हो गया, बोला मैं काल से बुद्धि विचार करके ज्योतिषी गणना के अनुसार उसको लूटने के लिए उनको गला काटने के लिए अभी सब रेडी किया था, उन्हें किसे पता चल गया वो लाख रुपये दे रहा है अपने आप, वो तो बिल्कुल हतप्रभ हो गया। तो नहीं ले रहा था, बोले मुझे लगता है कि आप बड़े महापुरुष हैं, आपको पता चल गया सारी चीज, मैं क्या करने जा सर, तो इसलिए खुद दे रहे हैं, आप कृपा करके मुझे क्षमा करें, आपको सब पता चल गया, आप रखिए मैं आपसे नहीं लूंगा, आप तो महापुरुष ही लगता है। बोले महापुरुष महापुरुष बात छोड़ो, आप रखो। ना नहीं नहीं मैं आपसे तो नहीं लूंगा, आप तो जो लगता है कि आप सर्वज्ञ हैं। बोले देखो सर्वज्ञ नहीं, सर्वज्ञ हो जो भी हो आप, उस रखो अगर आप नहीं लोगे, आप मुझे मारने के लिए, मारने के लिए बात कर रहे, देखिए ना कबाड़ खुल के दिखा दिया, सब तैयारी हो चुका था, आप भी 5 मिनट में आपके गला कटने वाला ही था, लेकिन क्या करे आप सोए नहीं, आप आकर खुद दे, किसी ने कटने वाला था किसी को लेने के लिए, आप खुद ला के दे रहे। बोला लेकिन मैंने पता लगाया था 8 था, आप 7 दे रहे हैं, 1 चलो ठीक है कोई बात नहीं, 1 रखिए, लेकिन 7 दे रहे हैं आपने, उसको भी लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन सनातन गोस्वामी जबरदस्ती दे दिए उनको। बोले आप नहीं लोगे तो आपके दे रहा दूसरा कोई मिलेगा ना, वो तो हो सकता है। इतने खुश हो गया कि बिना परिश्रम आपने आप ला करो दे रहे हैं, तो खुश हो गया। बोले मैं काल आपको किसी भी कीमत में सुबह होते बिल्कुल प्लान किया भेजने के लिए, वो सनातन गोस्वामी आए, आ करके वो सोए थे उसको उठाए निशान, बोले अरे और एक छिपा के रखा है, डर के मारे बोला आप कैसे पता चल गया बदमाश, और एक रखा तेरे पास, चल हट यहीं से विदा होगा, मेरे साथ नहीं जाना, तुझे अर्थ के प्रति आसक्ति है तो उसे भगवत दर्शन नहीं हो सकता, अब जाओ, उनको वापस भेज दिए। इस दोष में अकेले गए, उन्होंने उनको पारी करवा दिया, अकेले आकर के मिले, रास्ता में उनके सिकान से भट्ट, बड़ी लंबी कथा है, बनारस में गंगा पार करके आके पहुंचे, महाप्रभु वृंदावन से आकर बनारस पहुंचे थे, चंद्रशेखर आज बचपत्य के घर में रहते थे, वो तो बिल्कुल सेविन नहीं किए, इसे घूम फिर के आए, रास्ता में श्रीकांत मिले थे, उनके साला भिनोई साहब होंगे, बहुत बड़े बिजनेसमैन था, आजकल जमाने में जैसे गाड़ी का बिजनेस करते ना, मर्सिडीज गाड़ी की एजेंसी है, तो तभी जमाने में तो कार नहीं था, घोड़ा होते थे, राजकीय वाहन घोड़ा आदि होता था, घोड़ा का बिजनेस था उसका, हजार हजार घोड़ा बेचता था, खरीदता था, ऐसे करता था, और मंत्री महाशय का साइन से बिल चेक पास होता था, तो इसलिए उनके कृपा से बिजनेस उनका था, इसलिए उनको देख करके खूब बुला, बोले नहीं जाऊंगा, अगर कुछ हेल्प करना है मुझे गंगा पार करवा दो, तो बोट रिजर्व करके उनको गंगा पार करवा दिया। बहुत जबरदस्ती ठंडी के समय था, एक भूटान के साल उनको गिफ्ट भी, ठंडी है कुछ नहीं उसको ले जाइए, भूटान के साल तभी जमाने में 3 रुपया के था, आज के जमाने में पता नहीं कितने रेट होगा, बहुत कीमती माना जाता था, बड़ी कीमती भूटान के साल, उसको गले में लेकर के, और ऐसे ही दरवेश के रूप में, मुसलमान के भिखारी को दरवेश बोलते हैं, दरवेश के रूप में वो आ करके बनारस में पहुंचे, तो महाप्रभु को पता चल गया सनातन गोस्वामी आए हैं, सनातन आ चुके हैं, उन्होंने चंद्रशेखर के घर में बैठे थे, कृष्ण का दावता, बोले चंद्रशेखर जाओ एक बड़े भक्त आए उनको बुला के लाओ। वो बाहर में कोई भक्त भक्त नहीं, बोला महाप्रभु कोई भक्त नहीं, दोबारा जाकर देखो कोई भक्त आया है, कोई डिवोटी तो नहीं है, एक मुसलमान दरवेश भिखारी बैठा है, कोई दाढ़ी फाड़ी बढ़ाया से नहाया नहीं, कुछ नहीं कपड़ा नहीं पहना ढंग के, इसे आकर बोला एक दरवेश आया है, कोई डिवोटी तो नहीं है। बोले दरवेश उसी को लुकरा, तो आकर के बोला दरवेश आपको महाप्रभु बुला रहे हैं, चलो सनातन को समय तो जानते थे, एक कौन है बुला रहे हैं मुझे, ओरे वो तो उछल पड़े, बहुत उन्नत खुश होकर के घर के गए, महाप्रभु बैठ नहीं पाए, स्वयं उठ पड़े सनातन को मिले, उठ के आकर के जबरानी आलिंगन किए मिले, जितने चंद्रशेखर और बाकी जितने भक्त लोग थे, सारे भक्त अति आश्चर्यचकित थे, हे कौन ये, हमारे साथ महाप्रभु कभी इतने अपनापन इतने मिले नहीं, उनके साथ ऐसे आलिंगन ऐसे मिलन, घंटों आलिंगन मुद्रा में रह गए। तो महाप्रभु उनका अपने पास रखे, बोले ये सनातन है, उनको सेविंग कराओ, नया कपड़ा पहनाओ, बोले जब तक तुम रहोगे हमारा साथ प्रसाद पाना, ऐसे अपना ट्रीटमेंट कर रहे थे भगवान स्वयं उनको। लेकिन सेविंग पेंग कराए, सब व्यवस्था किए उनका, एक दो दिन के बाद हमेशा महाप्रभु सनातन को देखते थे, उनका एक कमल को जो फुट कमल जो साल था उस साल को नजर करते थे, सनातन को समझ गए कि महाप्रभु उसी को नजर कर रहे हैं। तो विचक्षण बुद्धि था। दूसरे दिन गए सुबह गंगा किनारे, बहुत सारे भिखारी सोते रहते हैं, एक बंगाली भिखारी पड़ा था, सुबह सुबह एक गोदड़ी कांथा ओढ़ करके जाकर उसको हाथ जोड़ के बोले, भैया आप एक गोदड़ी मुझे दे दो। हैं, इतनी गंदा हो, आपको चाहिए? आप भले आदमी लगते हैं ना। नहीं, मैं तुझे मेरे बदले ये देता हूं। अरे बाप रे, इतनी कीमती, इतने कीमती साल में ये गोदड़ी देते हैं उनके बदले में, मेरे साथ क्यों रहस्य खट्टा कर रहे हैं? मैं बेचारे भिखारी हूं, आप बड़े आदमी हो। वो तो विश्वास नहीं कर रहा था कोई इतने एक्सचेंज पड़े मूल्यवान चीज को, ये फटे गोदड़ी की यूज्ड क्लॉथ के लिए करेगा। लेकिन सनातन गोस्वामी उनके ऊपर साल रख करके उनसे टूटे फूटे गोदड़ी को लेकर ओढ़ करके चल बैठे और जा करके महाप्रभु के पास पहुंचे, प्रणाम के। महाप्रभु देख लिए, बड़े खुश हो गए, बोले सनातन ये क्या हो गया, आपके वो साल कहां गया? सनातन ने बोला, नहीं प्रभु जी, आप उसका मुझे पसंद नहीं रखना। इतने खुश हो गए, बोले हाँ मैं वही देखना चाहता था, मैं बोलने से पहले तू कर दिया। बोले कि तीनी मुद्रार भोट गाय मधु करी ग्रास, धर्म हानि है लोग करे उपहास। बोले आप तो भीख मांगने जा रहे हैं भिखारी के वेश में, और इतने कीमती साल ओढ़कर जा रहे, तो लोग बोलेंगे क्या, उपहास करेंगे आपको, अच्छा किया तूने कर दिया ऐसा। अब सनातन उत्सव के बोले कि नहीं, आपके कृपा नहीं, नहीं सच बात तो है कि कृष्ण आपको विषय की समुद्र से उठा करके लाए। जब विषय समुद्र से उठाए सारे रोग कुछ ना, तो ये छोटी रोग और क्यों छोड़ देंगे, अवशेष क्यों छोड़ेंगे, इसको भी क्लीन कर दिए। सनातन गोस्वामी बोले, मैं तो नहीं जानता हूं कृष्ण कृष्ण, मैं जानता हूं आपको, आपने मुझे उद्धार करके लाया आपकी कृपा बल से, और अंत में ये था उसको भी छुड़ा दिए। आप बार बार देख रहे थे, मैं समझ गया कि वो नहीं उचित है, छोड़कर आ गया। तो महाप्रभु दोबारा उठ के आलिंगन किए सनातन को, फिर सनातन को पास में रख करके शक्ति प्रदान करके 2 महीने तक उनको शिक्षा प्रदान किए। श्री सनातन शिक्षा चैतन्य चरितामृत में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा टू सनातन, सनातन गोस्वामी को 2 महीने तक जो शिक्षा दिए, और सनातन गोस्वामी स्टूडेंट बन करके पूछ रहे थे, महाप्रभु टीचर बन करके आंसर देते थे। आहा, कैसे प्रश्न करता, कैसे उत्तर करता। हम तो सुने थे प्रश्न करता उत्तर करता, 7 दिन में दोनों के उद्धार हो गया। सुख परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी बोले, परीक्षित गोस्वामी पूछे सुने, इन दोनों का 7 दिन में उद्धार हो गया। लेकिन ये दोनों ब्रह्मरात और विष्णुरात थे, ये दोनों ही उससे ओढ़कर अभिनव थे। प्रश्न करता उत्तर करता, सारे तत्व ज्ञान, जीव के स्वरूप तत्व, कृष्ण तत्व एक एक करके विश्लेषण करके, जो शिक्षा माध्यम से, सनातन शिक्षा माध्यम से 2 महीने तक गंगा किनारे महाप्रभु ने सनातन को शिक्षा दे करके उनको शक्ति देकर वृंदावन भेज दिए। लेकिन वृंदावन में कहां उनके मन लगेगा, फिर महाप्रभु के पास आ गए। जब दोबारा पुरी आते हैं, उनका वर्णन है, कितने तड़प करके आ रहे थे, रास्ता में खान पान नहीं था, कभी कहीं खेत के पानी पी लिए, कभी कुछ खा लिए, नहीं खाए, पूरे शरीर उनके रोगग्रस्त हो गया, खाज हो गया, स्काबिस, पूरे शरीर शर्म सड़ करके दुर्गंध पस ब्लड निकल रहा था। सनातन गोस्वामी बोले, मैं जा रहा हूं महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी, कितने दुर्भागा हुए, शरीर इतने दुर्गंधमय हो गया, पूरे शरीर सड़ करके पस निकल रहा है, मैं कैसे मिलूंगा जाकर उनको, इस दुर्गंध शरीर में मैं कैसे उनके सामने जाऊंगा। एक तो जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाता हूं मुसलमान सेवक हूं, और फिर महाप्रभु के साथ कैसे मिलूंगा। बड़े अपने मन में आपको धिक्कार किए, अपने दुर्भाग्य को बड़े विचार के, मैं कितने हतभाग्य हूं, शरीर भी साथ नहीं देता है। तो मन में डिसाइड किए, चलो जब आ ही चुका हूं अब क्या करूं, जाता हूं पुरी धाम में, अभी जगन्नाथ रथ यात्रा आने वाला है, इस रथ यात्रा में छिप करके खुद जाऊंगा रथ के सामने, रथ के चक्का के नीचे मेरे शरीर पिस जाएगा, सुसाइड कर डालूंगा गाड़ी के नीचे, सुसाइड कर डालूंगा रथ चक्का के नीचे, बाकी शरीर से तो कुछ नहीं हो पाया, भगवान की श्री नंदीघोष रथ के नीचे अगर मर्डर हो जाऊं, सुसाइड कर लूं, तो शायद धाम में और उनके रथ के चरण स्पर्श में मेरा कुछ उच्च गति हो जाए, कुछ कल्याण हो जाए, बाकी मेरे से तो कुछ नहीं होने वाला, सबसे खोटा भाग्य वाला हूं। ऐसे विचार करके डिसीजन ले ही लिए कि जा करके रहूंगा, रथ यात्रा के दिन खुद जाऊंगा रथ के सामने, बस एक्सीडेंटल डेथ, मर्डर हो गया, कर डालूंगा, मन में डिसाइड करके गए थे। जाकर पुरी में पहुंचे, दूर से चक्र पताका को दर्शन के मंदिर के पास नहीं जाएंगे, दूर से उस पतित बावन बाना को दर्शन करके फिर हरिदास ठाकुर के गेट के पास पहुंचे। हरिदास ठाकुर मंदिर नहीं जाते, दूर जाते थे, उनके पास पहुंचे। पहुंच करके अब वहीं रहने लगे। महाप्रभु तो प्रतिदिन हरिदास ठाकुर पास आते थे, महाप्रभु आए आके पुनः सनातन पीछे हट जाते थे। हरिदास बोले कि प्रभु सनातन, सनातन सनातन ना चमक पड़े महाप्रभु, कहां सनातन, दूर से प्रणाम कर रहा। अरे दौड़े महाप्रभु सामने से पकड़ने के लिए, सनातन को समय बैक स्टेप जा रहे हैं, पीछे पीछे नहीं 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 प्रभु मत छुइए, मत छुइए, अति पापी नीच पूरे शरीर में सड़ा हुआ है, पस निकल रहा है, ब्लड निकलती दुर्गंध, प्लीज प्रभु कृपा करके मत आइए मत आइए। लेकिन महाप्रभु जबरानी दौड़ करके गए, जबरदस्ती जा करके जबरदस्ती गांड आलिंगन में लिए। ओहो हो, पूरे महाप्रभु के दिव्य कलेवर में, पूरे शरीर में उस जो पूज रक्त पूरा अष्टांग छप गया। उसको देखकर सनातन गोस्वामी तो रो पड़े, बोले मैं अधम के लिए प्रभु के दिव्य कलेवर दुर्गंधमय हो गया, क्या हो गया, लेकिन मानते भी तो नहीं, क्या करूं मैं, पीछे पीछे कितने भागू, और दुख हुआ हमको। और मन में डिसाइड के सही में जल्दी आत्महत्या तो करना ही, एक तो गलती और वो भी करते हैं। दूसरे दिन महाप्रभु आए, सनातन को आकर प्रसाद दिए, माला दिए, आलिंगन तो करते ही थे, पास में बैठा कर बोले सनातन, बोलते हैं सनातन देह त्यागे कृष्ण यदि पाइए, कोटि देह क्षण के तबे छड़ित परिये। सनातन देह त्यागे कृष्ण यदि पाइए, सनातन शरीर छोड़ने से अगर कृष्ण प्राप्ति हो जाते, आत्महत्या करने से अगर कृष्ण प्राप्ति हो जाता है तो बहुत इजी है, मैं तो खेड़ में करोड़ बार शरीर छोड़ सकता हूं, बहुत इजी है, सुसाइड करने से कृष्ण प्राप्ति हो जाएगा। देह त्यागे कृष्ण ना पाई, पाइए भजने, देह त्याग करने से कृष्ण नहीं प्राप्त होते हैं, कृष्ण प्राप्ति तो भजन के द्वारा होता है। कृष्ण प्राप्ति रे उपाय को नहीं भक्ति विनय, भक्ति के अलावा कृष्ण प्राप्ति किसी के द्वारा नहीं हो सकता, तो इसे सुसाइड के विचार मन में छोड़ दो। सनातन गोस्वामी तो किसी को नहीं बताते, बात मन में था, तो महाप्रभु तो अंतर्यामी है, उनको ऐसे करके डांटे। और बोलते बोलते बोले ये हत्या मन में विचार क्यों लाता है, ये तम धर्म है, पाप कर्म। तो यहां तक बोलते बोलते बोले कि ये जो शरीर है तेरा, ये तो मेरा है, सनातन गोस्वामी बोले प्रभु आपको मुझे जिला कर क्या मिलेगा। सनातन बोलते हैं जैसे नचा नाची जेना काष्ठ यंत्र, नीच अधम पामर मुई पामर स्वभाव, मैं नीच अधम पामर हूं, मोरे जियाई ने तुम्हारा किवा हवे लाभ, मुझे जो जीवित रखना चाहते हो प्रभु आपका क्या लाभ होगा, मुझे जीवित क्यों रखना चाहते हैं, इसने सड़े हुए शरीर के साथ मुझे जीवन क्यों रखना चाहते हैं। तो महाप्रभु साक्षात उनके सामने कहते हैं प्रभु कहे तुम्हारा देह मोरा निज धन, प्रभु कहे तुम्हारा देह मोरा निज धन, तुम्ही मोरे करिया अच्छा आत्मसमर्पण। महाप्रभु स्वयं अपने मुंह से बोलते हैं, बोलते तुम्हारा शरीर मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी है, तुम्हारा देह मोरा निज धन, तुम्ही मोरे करिया अच्छा आत्मसमर्पण, परे द्रव्य तुम्ही कहने चाहो विनाशित, दूसरे के प्रॉपर्टी आप कैसे नाश करना चाहते हो, ये तो मेरा है। धर्म धर्म विचार की बात ना अपार करी थे, धर्म धर्म विचार नहीं कर पाते, ऐसे बोल करके आगे कहते हैं तुम्हारा शरीर मोरा प्रधान साधना, ए शरीर साधी मुआमी बहु प्रयोजना। सनातन गोस्वामी अपने शरीर त्याग करना चाहते थे, लेकिन भगवान उनके शरीर को त्यागने नहीं दिए, डांट करके फटकार करके बोले ये शरीर मेरा है, आप कैसे मिटा सकते हैं उसको, ये मेरा धन है, अब पूछे धन से तुम क्या यूज करेंगे धन को, बोलते तुम्हारा शरीर मेरा प्रधान साधना, ए शरीर ये साधि मुआमी बहु प्रयोजना, ये तुम्हारा शरीर मेरा प्रधान साधन है, इस शरीर के द्वारा मैं बहुत बहुत काम बनाऊंगा, बहुत प्रयोजन साधन करूंगा। क्या क्या ना, भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्वर निर्धार, वैष्णवरा कृत्यार वैष्णव आचार, कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सवा प्रवर्तन, लुप्त तीर्थ उद्धार वैराग्य शिक्षण, निज प्रिय स्थान मथुरा वृंदावन, तहां ए धर्म नहीं करिते प्रचारण। बोलते ये सब काम वृंदावन में तेरे से द्वारा मुझे कराना है, वृंदावन में इस शरीर को लगाकर ये सब मुझे काम कराना है। तो इस प्रकार इसको सुन करके हरिदास ठाकुर भी आश्चर्य, वाह साक्षात भगवान सनातन गोस्वामी को शरीर को डिमांड करके बोलते हैं कि इसे माय प्रॉपर्टी। बाद में सनातन जो बोले हरिदास ठाकुर को, प्लीज देखिए मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं तुम्हारा भाग्य सीमा ना जाए कथान सनातन, तुम्हारा सौभाग्य की सीमा तो कहा नहीं जा सकता, तुम्हारा देह कहे न प्रभु मोरा जीन निज धन, प्रभु स्वयं कहते हैं कि तुम्हारा शरीर मेरा निज धन है, तुम्हारा समय भाग्यवान नहीं को न जाना, निज देह जयकार जय ना पारे न करते, भगवान स्वयं आपने श्री दिव्य कलेवर के द्वारा जो कार्य नहीं कर पाते, निज देह जे कार्य ना पारे न करते से कार्य कराइवे तुम्हारा देह से मथुरा ते, से कार्य को जो कार्य भगवान स्वयं आप नहीं कर सकते आपके द्वारा वो भी वृंदावन में उप काम को कराएंगे ये शरीर से। तो कितने महाभाग्यवान हो, हरिदास ठाकुर भी बड़ी बड़ी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी जिनके शरीर को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु डिमांड करके बोलते दिस इज माई बॉडी दिस इज माई प्रॉपर्टी, मैं इस पर ये सब काम कराऊंगा, मरने नहीं दिए। तो इसी प्रकार के और क्या क्या सारे भक्ति साधन धर्म आचरण बहुत कुछ वृंदावन में रख करके सनातन के शरीर को भगवान ने आपने स्वयं यूज किए, सनातन को विशेष करके धन्य प्रकाश करवाए, बहुत कुछ कार्य साधन के भगवान के मेन इंस्ट्रूमेंट सनातन गोस्वामी बने। से भगवत गीता में अर्जुन को भगवान कहते हैं, बोले अर्जुन तू क्या निमित्त मात्रम भव सभ्य साची उठिष्ट जसल भस्व, उठ करके क्रेडिट लो काम तो मैं करा रहा हूं, तू केवल इंस्ट्रूमेंट बनो। तो इसी प्रकार उनको इंस्ट्रूमेंट की बात कहे, यहां तो बोलते हैं तू इंस्ट्रूमेंट तो मेरा प्रॉपर्टी है, उससे बढ़ करके भगवान कृष्ण अर्जुन को जितने प्यार जितने प्रेम जितने स्नेह करते थे उससे कई गुना ज्यादा आपने धन कह करके उनको रखे रखा किए, वृंदावन में यूज कराए, लड़ाई झगड़ा में नहीं कुरुक्षेत्र में यूज कराए अर्जुन को जैसा कराए भगवान, नहीं सिद्धाम वृंदावन में ये महान महान कार्य में उनको यूज कराए, वही सनातन के इसी कृत्य के कारण आज हम लोग मुड़ मुड़ा करके तिलक लेकर यहां बैठे हैं, नहीं तो हमारा क्या साध्य है इस स्थिति को प्राप्त हो, यही तो केवल उसी सनातन की कृपा और सनातन जैसे छह गोस्वामी की कृपा, उन्होंने श्री धाम वृंदावन को सारे जगत में प्रकट करवाए, वही श्री धाम वृंदावन को प्रकट करवाए, बंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्री जीव गोपाल को। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी जो एक समय इतने बड़े अंग भंग कलिंग उसी तीन स्टेट का प्रधानमंत्री पद में रहते थे, कैसे उसे त्याग करके क्या बन गए, त्यक्त्वा तुरुण अशेष मंडल पति श्रेणी सदा तुच्छवत भूत्वा दीन गणेश को करुणया को पीन कंथाश्रित गोपी भाव रसामृताब्दि लहरी कल्लोल मग्नो मुहुर वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्री जीव गोपाल को, क्या से क्या बन गए। आजकल समाज में प्राय समस्त जनता सभी लोग हम लोग भी हमेशा मन में यही प्लान प्रोजेक्ट रखते हैं, कैसे हम बड़े बने, हाउ आई वांट टू बी एंजॉयर कंट्रोलर प्रोपाइटर, मैं कैसे मालिक बन जाऊं, कैसे भोक्ता बन जाऊं, कैसे मैं शासक बन जाऊं, सबसे बड़े पदवी मेरा हो जाए पोस्ट पोजीशन हो जाए, है ना। नहीं सबके मन में कहीं कोने में क्या बड़े रकम में हर प्रकार से दिन रात वही चेष्टा में लगे पड़े हैं, लेकिन ये गोस्वामी उनसे बढ़कर कोई था नहीं। बुद्धि में, ज्ञान में, रूप में, गुण में, धन में, प्रतिष्ठा में, जस में क्या नहीं था उनका। सब कुछ हो करके वो कंपटीशन में लगे हैं, कैसे छोटे बनूं, कैसे सब छोड़ूं, कैसे भिखारी बन जाऊं। भिखारी से गोदड़ी कंथा मांग करके लेकर आके ओढ़े, उनको भूटान के कमल साल दे दिए। अद्भुत है, यही है वैराग्य धर्म, यही है भक्ति। भक्ति में जो रस प्राप्त कर लिया वो फिर ये बढ़ोती कामना नहीं रखेगा, उसे बड़ा बनना, श्रेष्ठ बनना, प्रॉपर्टी बनना, प्रोपराइटर बनना, इंजीनियर बनना, कंट्रोलर बनना नहीं चाहेगा, और तब दास 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 दासान दास ये बनना चाहेगा। इतने नीच नीच होना चाहेगा, सहिष्णु होना चाहेगा, नौकर बनना चाहेगा, सबसे नीचा बनना चाहेगा। ये है बिल्कुल अपोजिट, ये भौतिक बात और भक्ति की बात। इसको सिखाने के लिए श्री षड गोस्वामी में वरिष्ठ श्री सनातन गोस्वामी स्वयं आपने आचरण के द्वारा ये करके दिखा, करके दिखा। ये भाव ऐसे महान पुरुष भगवान के सब कुछ कहा जाता है, भगवान के सर्वस्व, भगवान तो बोल गए मेरे निज धन है, और उनके भक्त पार्षद क्या कहे, उनके प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, सब कुछ है। एक बार जगदानंद पंडित उनको बोल दिए कि तुम वृंदावन चले जाओ, तुम्हारे शरीर से इकड़े बहुत सारे पस लग करके महाप्रभु कंटामिनेट कर रहे, आप चला जाना चाहिए वृंदावन। तो दूसरे दिन आकर के बोले प्रभु मैं जाऊंगा, आप पंडित जी ने मुझे ऐसे बोले। सुन करके महाप्रभु गुस्से हो गए, बोले क्या ये काल के बटुआ ये जूनियर डिवोटी जगदानंद आपको बात कर रहा है ऐसा, इतने उनके साहस है, आप जैसे सीनियर डिवोटी कैसे बात कर रहे हैं आप, मैं गुरु करके मानता हूं आपको, महाप्रभु कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं, आपको उपदेश देने लगाओ, इसी गुस्से हो गए। महाप्रभु सनातन गुस्से हो, इतने आदर करते थे, प्रेम करते थे, अपना मानते थे, उनके बारे में कोई कुछ कह दे सहन नहीं करते थे, इतने प्रेम करते थे, बार बार उनके शरीर के कंडू रसा को अपने शरीर में लेते थे, दिखे कि सनातन खराब लगता तो एक मिनट में उनको सोना बना दिए, लेकिन कितने प्रेम था सनातन के शरीर के प्रति, ये सब दिखाता। एक बार तो जब उनको बुलाए थे वो जाकर के समुद्र किनारे किनारे गए, उसको देख करके महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, उनके सहिष्णुता उनके धन्यता को देख करके बोले सनातन मर्यादा पालन है भक्तिर भूषण, आप अगर इसे मर्यादा पालन नहीं करेंगे तो दुनिया को कौन सिखाएगा, आप ही है सनातन शिक्षा, सनातन काल तक आप ही शिक्षा देते, शिक्षा गुरु सभी के, आप सबके शिक्षा गुरु बनेंगे, आपके आचरण ऐसे अद्भुत एक आदर्श रह जाएगा, ऐसे शिक्षा देते थे। ऐसे सनातन गोस्वामी जो साक्षात भगवान के सर्वस्व हैं, उन्होंने वृंदावन में आए, वृंदावन में रह करके भगवान श्री मदन मोहन संबंधादि देव मदन मोहन को स्वयं प्रकट कराए, मदन मोहन तो उनके पीछे पड़ गए, अरे बुढ़ा मैं तेरे साथ रहूंगा, पीछे पड़ करके उनके साथ आके रहे। बड़ी लंबी कथा है, मदन मोहन के साथ सनातन गोस्वामी जी प्रणय व्यवहार जिस प्रकार, और बहुत अगाध चरित्र सनातन जी का। आज उनके तिरुधान दिवस में हम लोग, समय भी बहुत हो रहा है, वो ज्यादा नहीं कर पाएंगे, कम से कम ये विशेष तिथि में आज श्री सनातन गोस्वामी के श्री चरण कमल में हम सब हमारे हृदय से प्रार्थना प्रणति करेंगे कि हे सनातन गोस्वामी, जैसे प्रार्थना किया गया वंदे रूप सनातन और रघुजुगो श्री जीव गोपाल को छह गोस्वामी, उनमें से सबसे सीनियर मोस्ट सनातन गोस्वामी पाद, उनके श्री चरण में प्रार्थना करेंगे, हे सनातन गोस्वामी पाद आप जैसे धन्यता को प्रकाश किए, जिस प्रकार धन्यता दिखाए, करके दिखाए, उसके एक करोड़वा हिस्सा से एक करोड़वा हिस्सा भी अगर हम प्राप्त हो जाए, हमारा ये तुच्छ जीवन भी सफल हो जाए। यही प्रार्थना हमारे श्री आज सनातन गोस्वामी की तिरुभाव तिथि में उनके श्री चरण में हमारे पुष्पांजलि के रूप में हो, है ना। हरे कृष्ण।